निर्गमन 20 अध्याय 12 से 13 पद। तू अपने पिता और अपनी मादा का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और तमाम टेलीविजन पर देख रहे श्रोताओं, मत्ती 22 अध्याय में एक व्यवस्थापक ने यीशु से प्रश्न पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है। वो यीशु से पूछ रहा था कि बहुत सारी आज्ञाओं में से जो परमेश्वर ने दी है उनमें से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। मत्ती 22 अध्याय 37 से 40 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, बड़ी और मुख्य तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आज्ञाएं बाइबल में दी है, लेकिन अगर हम इन दो चीजों को अपने हृदय में साध लें, परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखें, तो हम दूसरी आज्ञाओं को भी मान सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम पाप नहीं करेंगे जिनसे परमेश्वर बैर रखता है, और अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं तो हम अपने पड़ोसियों के साथ बुराई नहीं करेंगे। इसलिए रोमियो 13:10 पद कहता है कि प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। लेकिन यदि हम सिर्फ ये कहें कि परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि विशेष तौर पर हमें क्या करना है। इसीलिए बाइबल की 66 किताबें हमें दी गई है जो इसका विवरण देती हैं, और आखिरकार में मूसा को दी गई 10 आज्ञाएं, वो भी एक थोड़ा सा और अधिक विवरण है उन दो आज्ञाओं का जो हमें कहती हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने पड़ोसियों से प्रेम रखो। उनमें से 1 से लेकर 4 आज्ञा तक वो सबसे पहली आज्ञा के विषय में है जो हमें कहती है कि हम अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे मन से प्रेम रखें। ये केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रेम रखना है, कोई मूर्ति नहीं बनाना है, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है और साथ ही सबत को पवित्र रखना है। ये सारी की सारी आज्ञाएं हमें कहती हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें। और 5वीं आज्ञा से लेकर 10वीं आज्ञा तक यह उस आज्ञा के विषय में है जो हमसे कहती है कि हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। यहां पर परमेश्वर हमें कहता है कि अपने माता पिता का आदर करें और अपने पड़ोसियों से बुराई भी ना करें, ना कोई खून करें, ना कोई व्यभिचार करें, ना चोरी करें। अगर हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पड़ोसी मुश्किल में आए, इसलिए हम स्वाभाविक तौर पर इन आज्ञाओं को मान पाएंगे। दानियल 9:4 पद कहता है कि हमारा परमेश्वर अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आशीष आप पर आएगी, जैसा कि परमेश्वर के वचन में कहा गया है। मुझे आशा है कि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखेंगे और विश्वास योग्यता के साथ तमाम आज्ञाओं को मानेंगे, और इस प्रकार से परमेश्वर की करुणा में आप निवास करने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, 5वीं आज्ञा 10 आज्ञाओं में से वो है अपने माता पिता का आदर करना। आपके माता पिता वो है जिन्होंने आपको जन्म दिया है और आपको पाला है। यद्यपि अपने माता पिता से किसी कारणवश आपने ज्यादा प्राप्त नहीं भी किया है, तो भी अपने माता पिता के बगैर आप अस्तित्व में ही नहीं होते। इसीलिए यद्यपि यह 10 आज्ञाओं में नहीं भी बताया गया होता, अगर आपके पास भला विवेक है तो आप जानते हैं कि यह स्वाभाविक है, मनुष्यों का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का आदर करें। लेकिन जब परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, तो वह हमें देहिक या शारीरिक तौर पर उनके आदर के विषय में नहीं कह रहा। इफिसियों 6:1 पद कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। इसका मतलब यह है कि हमें प्रभु में अपने माता पिता का आदर करना है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन में अगर हम अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं तो यह परमेश्वर की आज्ञा को मानना नहीं है। इसे परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए, रविवार को यदि आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि आज तो छुट्टी है, चर्च मत जाइए, आइए हम आपस में परिवार के साथ समय गुजारें, तो फिर क्या आप सबत का उल्लंघन करेंगे अपने माता पिता को खुश करने के लिए? क्या परमेश्वर के साथ शांति को आप भंग करेंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अपने माता पिता को इस तरह की चीजों के लिए आज्ञा मानते हैं तो यह अपने माता पिता का आदर करना नहीं है, वरन अपने माता पिता के साथ नाश में गिर जाना है। यदि वास्तविकता में अपने माता पिता का आप आदर करते हैं, आज्ञा मानते हैं, तो सबसे पहले उद्धार पाने के लिए आप उन्हें प्रचार करेंगे और मदद करेंगे। चाहे कितने ही बेहतर अपने माता पिता की सेवा आप क्यों ना करें, लेकिन अगर उनके प्राण को नरक में गिरने के लिए आप छोड़ दें तो कैसे कहा जा सकता है कि आप अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं? इसीलिए आपको परमेश्वर की इच्छा भी पूरी करनी चाहिए और साथ ही अपने माता पिता के हृदय को भी प्रभावित करना चाहिए ताकि वे भी स्वर्ग के राज्य में जा सकें। यह है सच्ची सेवा अपने माता पिता की। दूसरा इतिहास 15 अध्याय 16 पद कहता है, वरन आसा राजा की राजमाता माका, जिसने अशेरा के पास रखने के लिए एक घिनौनी मूरत बनाई, उसको उसने राजमाता के पद से उतार दिया और आसा ने उसकी मूरत काट कर पीस कर किद्रोन नाले में फूंक डाली थी। यदि वो राजमाता जो कि एक प्रकार की राष्ट्र की माता है या पहली स्त्री है, यदि वो मूर्ति पूजा करे तो यह ना केवल परमेश्वर के विरोध में खड़ा होना है और नाश के मार्ग पर जाना है, वरन यह लोगों को भी धोखा देना है मूर्ति पूजा करने के लिए और उन्हें भी नाश में ले जाने के लिए। इसीलिए राजा आसा ना केवल अपनी माँ से असहमत था, वरन उसने अपनी माँ को राजमाता के पद से भी उतार दिया। इसके द्वारा उसकी माँ भी अपने मार्ग से मन फिरा सके और लोग भी बच सके। ये है वास्तविक अपने माता पिता का आदर करना। इसीलिए आपको कहा नहीं जा सकता कि केवल शारीरिक तौर पर अपने माता पिता की सेवा करने से आपने उनका आदर किया है। सबसे बढ़कर आपको वास्तविकता में अपने माता पिता की सेवा करने वाला, आदर करने वाला कहा जा सकता है जब आप स्वर्ग के राज्य की ओर उनकी अगुवाई करते हैं, और साथ ही साथ आपको उनकी सेवा प्रभु में अपने बेहतर प्रयासों के साथ करनी चाहिए कि आप उनके हृदय को प्रसन्न कर सकें। लेकिन वो आज्ञा जो हमें कहती है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, वो उसी आज्ञा के संदर्भ में है जो आज्ञा हमें परमेश्वर के आदर करने के विषय में कहती है। यदि हम वास्तविकता में अपने हृदय से प्रेम करते हैं तो हम स्वाभाविक तौर पर अपने माता पिता का आदर करेंगे, और वो जो अपने संपूर्ण हृदय से अपने माता पिता का आदर करते हैं तो वो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की सेवा भी करेंगे। लेकिन अगर उन दोनों में आपको प्राथमिकता देनी हो तो सबसे पहले है परमेश्वर की सेवा करना। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यदि एक पापा अपने बेटे को कहते हैं कि आप पूरब जाइए, तो बेटा स्पष्ट तौर पर अपने पापा की बात को मानने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या होगा अगर उस बेटे के दादा उसे पश्चिम जाने को कहे, पूरब जाने को नहीं? तो फिर बेटा अपने पिता को कहेगा कि दादा ने मुझे पश्चिम जाने को कहा है, और उसके बाद अपने पिता को बताने के बाद वो फिर पश्चिम चला जाएगा। यहां पर अगर ये पिता अपने पिता की आदर करता है जो कि दादा है, तो फिर वो भी जो कुछ दादा ने कहा है अर्थात अपने पिता की बात को मानेगा। इसीलिए वह यह सोचकर दुखित नहीं होगा कि उसके बेटे ने दादा की बात को माना है, मेरी बात को नहीं माना, उसने मुझे अनदेखा कर दिया। और अब हम उसकी बात करें जिसने आपको और मुझे रचा, हमारे पिताओं को, दादाओं को और तमाम पूर्वजों को और हमसे पहली पीढ़ियों को। वो हमारा परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर वो है जिसने आदम को रचा, जो तमाम मनुष्य जाति का पिता है, और परमेश्वर वो भी है जिसने मनुष्यों को जीवन दिया है। जब एक मनुष्य को गर्भ में धारण किया जाता है तो वह अभिभावकों के शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से गर्भ धारण किया जाता है। लेकिन जीवन का मूल बीज जो कि शुक्राणु और अंडाणु है, वो भी परमेश्वर के द्वारा दिया गया। जब हमारे माता पिता को गर्भ में धारण किया गया तो वह उनके माता पिता के जीवन के बीज के द्वारा गर्भ धारण किए गए जो कि परमेश्वर ने दिया है। और इससे भी बढ़कर जो शरीर हम यहां देखते हैं वो एक कवच है जो इस संसार में हमें अस्थाई जीवन के लिए चाहिए, और हमारा जो सच्चा स्वामी है वो हमारा आत्मा है जो शरीर में है। इसलिए मनुष्य कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, वह अपने आप में जीवन के बीज को उत्पन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने आप में शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकते, और साथ ही चाहे हम कितना ही ज्ञान एकत्र क्यों ना करें तो भी हम मनुष्य की आत्मा को ना तो बना सकते हैं ना ही प्रतिरूप बना सकते हैं। यहां तक कि हम मनुष्य का प्रतिरूप बना भी दें क्लोन करने के द्वारा, लेकिन जब तक परमेश्वर उस शरीर में आत्मा न दें तो हम उसे मनुष्य नहीं कह सकते। मनुष्यों को तमाम सृष्टि का प्रभु कहा जाता है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें आत्मा दिया है। यदि मनुष्य मनुष्य का प्रतिरूप बना सकें, आज के हैरान करने वाले विज्ञान के द्वारा लंबे समय के बाद, तो हो सकता है उनके लिए संभव हो कि वह मनुष्य का आकार बनाए, लेकिन वह आकार जानवर के समान होगा क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उन्हें आत्मा नहीं दिया जाएगा। आत्मा को ना तो बनाया जाता है ना मनुष्य की योग्यताओं से पैदा किया जाता है, केवल यह परमेश्वर ही कर सकता है, और आत्मा फिर से केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही जन्म पाता है। इसीलिए हमारी आत्मा के सच्चे माता पिता हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हमें अपने शारीरिक माता पिता की सेवा अच्छे से करनी चाहिए, परंतु हमें पिता परमेश्वर की और भी कहीं ज्यादा सेवा करनी चाहिए और उसे प्रेम करना चाहिए जिसने हमें अपने आप में जीवन दिया है। और साथ ही यदि माता पिता इस बात को जानते हैं तो फिर वो ये नहीं सोचेंगे, मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, जैसे मैं चाहूं उन्हें वैसे नियंत्रित कर सकता हूं। भजन संहिता 127 अध्याय 3 पद कहता है, देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे कि लिखा गया है कि एक संतान वह भाग है, वह फल है जिसका पालन पोषण आपको परमेश्वर की इच्छा में करना है। वो आपसे संबंधित नहीं है जिसे आप अपनी इच्छा से संभालें, क्योंकि अब्राहम के पास ऐसा हृदय था, इसलिए बिना संकोच के वो पालन कर पाया जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि अपने इकलौते पुत्र इसहाक को वो होम बलि करके चढ़ाएं। प्यारे भाई और बहनों, आदर करने का अर्थ है आदर और सम्मान के साथ व्यवहार करना। और अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचें कि क्या आप अपने माता पिता को अनदेखा करते हैं, या फिर अपने माता पिता की ओर आपने ध्यान नहीं दिया जबकि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अपने साथी के सामने या फिर विश्वासी भाई के सामने आप मुस्कुराते हैं, दीन रहते हैं, लेकिन जब आप अपने घर जाते हैं क्या आप चालाक नहीं बने या अनुपयुक्त नहीं रहे अपने माता पिता के साथ और परिवार के लोगों के साथ? जब आपके बुजुर्ग माता पिता कुछ ऐसा कहते हैं जो आपको उचित नहीं लगता, तो क्या आपने ये नहीं सोचा कि वो मूर्ख थे और ऐसे काम और ऐसी बातें नहीं कही जिससे आपने उनको अनदेखा किया? परमेश्वर से प्रेम करना और हमारे माता पिता का आदर करना ये कोई अलग अलग बातें नहीं है। पहला यहूना 4 अध्याय 20 पद कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखें, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यदि आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने भाई से बैर रखते हैं, तो यह प्रमाण है कि आप झूठ बोल रहे हैं। और साथ ही मत्ती 15 अध्याय 4 से 9 पद में हम देख सकते हैं कि यीशु फरीसियों और सदुकियों को उनके कपटीपन के लिए वहां पर डांट रहे हैं। यीशु ने उन्हें उन बातों के लिए डांटा जो चीजें माता पिता को देनी चाहिए थी, और वो कह रहे थे कि वो उसे परमेश्वर को दे रहे हैं। वास्तविकता में वे परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो हृदय से परमेश्वर की सेवा कर रहे होंगे, वरन वो बहाना बनाकर कि वो परमेश्वर को दे रहे हैं, वो उसे अपने लिए ले रहे थे जो उन्हें अपने माता पिता को देना था। मान लीजिए आपके बुजुर्ग माता पिता है और उनके खर्चों के लिए हर महीने आपको उन्हें पैसा देना पड़ता है, लेकिन अब आपने अपना मन बदल दिया है, आपने निर्णय लिया है अब आप उन्हें महीने में पैसे नहीं देंगे ताकि परमेश्वर को अधिक भेंट देने सके। लेकिन क्या इस तरह के निर्णय के साथ आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? आपको परमेश्वर को वो देना ही है जो परमेश्वर का है, और अपने माता पिता को वो देना है जो उनसे संबंध रखता है। अगर आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से वास्तविकता में प्रेम करते हैं और आदर करते हैं, तो आप अपने माता पिता की, अपने शारीरिक माता पिता की भी सेवा करेंगे और सम्मान करेंगे। यहां तक कि अगर आप पहले अपने माता पिता से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम का एहसास करते हैं तो आप अपने माता पिता के प्रेम का भी एहसास करेंगे। जब आप आत्मा में आते हैं और सत्य में आते हैं, पाप और बुराई को दूर करते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में निवास करते हैं, तो आपके हृदय में सच्चा प्रेम आएगा। तो फिर आप अपने माता पिता के प्रेम और अनुग्रह को भी एहसास करेंगे जिन्होंने आपको जन्म दिया, अनुग्रह दिया, ताकि आप उस प्रेम के साथ उनकी सेवा और प्रेम कर सकें जो आपके हृदय की गहराई से आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने अपनी आशीषों की प्रतिज्ञा उनको दी है जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और अपने माता पिता का आदर करते हैं। आज का पाठ निर्गमन 20 अध्याय 12 पद कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। सामान्य तौर पर इसका अर्थ सिर्फ यह नहीं कि इस धरती पर हम एक लंबा जीवन जिएंगे। अगर आप सत्य में परमेश्वर का आदर करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपका प्राण समृद्ध होगा। इसका अर्थ यह है कि जब आपका प्राण समृद्ध होता है तो आपके साथ सब चीजें भली चंगी रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे और परमेश्वर आपको हर पहलू में सुरक्षा देंगे। कोई दुर्घटना और विपत्ति आपके ऊपर नहीं आएंगी और आप आशीष पाएंगे अपने परिवार में, कार्यशालाओं में और व्यापारों में। यहां पर लिखा है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। ये इन तमाम आशीषों को दर्शाता है। पुराने नियम में रूत के साथ यही मामला था। रूत एक ऐसी परिस्थिति में थी जहां पर उसे एक बहुत ही मुश्किल शारीरिक जीवन को जीना पड़ा। वो एक अन्य जाति थी, उसका विवाह यहूदी से हुआ, लेकिन उसका पति जवानी में ही मर गया। बिना संतान पैदा किए हुए उसका ससुर भी मर चुका था। परिवार में कोई पुरुष नहीं था जो परिवार को संभाल सके। क्या आपने कभी अपने बीते जीवन में शिकायत की है, ये कहते हुए कि मेरा जीवन बहुत मुश्किल है, क्यों इतनी सारी आजमाइशें और मुश्किलें मेरे ऊपर आती हैं? तो फिर अपने जीवन की तुलना रूत के जीवन से करें। क्या आप रूत से भी कहीं मुश्किल जीवन में जी रहे हैं? उसका ससुर मर चुका था, कोई पुरुष नहीं था परिवार को संभालने वाला। ऐसी परिस्थिति में उसकी सास नयोमी ने कहा कि वापस यहूदा को जा रही है और रूत ने कहा कि वो भी अपनी सास के साथ जाएगी। नयोमी ने अपनी बहू को कहा कि वो अपने ही देश में रहें और यहीं पर अपने लिए खुशियां ढूंढे, लेकिन रूत उसकी बातों को उसने नहीं सुना, क्योंकि वो अपनी सास को वैसे ही नहीं छोड़ सकती थी जो अकेले थी। इसलिए रूत ने अपने तमाम रिश्तेदारों को छोड़ नयोमी के साथ चल पड़ी अंत तक उसकी सेवा करने के लिए। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? नयोमी वो उसकी अपनी मां नहीं थी, वरन सास थी, लेकिन तो भी अपनी बहू का कर्तव्य निभाने के लिए उसने अपनी व्यक्तिगत खुशी को त्याग दिया। और साथ ही क्योंकि रूत ने अपनी सांस से परमेश्वर के बारे में सुना था, इसलिए स्वाभाविक तौर पर परमेश्वर में उसका विश्वास था। रूत एक अध्याय 16 से 17 पद में रूत एक बहुत ही प्रभावकारी अंगीकार करती है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। उसका हृदय कितना दृढ़ और स्थिर था, उसके पास ऐसा विश्वास योग्य हृदय था। जब उसने भलाई का मार्ग चुना और धार्मिकता का, वो पछताई नहीं वरन अपवर्तनीय तरीके से तमाम मुश्किलों के बावजूद भी उसी मार्ग का अनुसरण किया। इस सुंदर अंगीकार को सुनकर परमेश्वर ने उसे महान आशीषों का आनंद दिया परमेश्वर में, यद्यपि वो एक अन्य जाति महिला थी। परमेश्वर ने उसकी मुलाकात उसके पहले पति के संबंधियों में से एक अमीर व्यक्ति से कराई जो उसका नया पति हुआ, और बाकी बचा हुआ जीवन अपने सांस के साथ उसने वहां पर परमेश्वर की आशीषों में जिया। साथ ही साथ उसके वंशजों में राजा दाऊद भी था, और परमेश्वर ने उसका नाम यीशु, जो हमारा उद्धार करता है, उसकी वंशावली में अभिलिखित होने दिया। जैसा परमेश्वर ने वादा किया था वैसे ही रूत ने इस प्रकार की आशीषें तात्विक और आत्मिक तौर पर प्राप्त की अपने माता पिता का अपने हृदय से आदर करने के द्वारा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप में से बहुत से सदस्य, जैसे जैसे आपका विश्वास बढ़ता है, आत्मिक और शारीरिक तौर पर अपने माता पिता का आप आदर करते हैं, आसपास के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आप परमेश्वर की आशीषें पाते हैं, ना केवल माता पिता ही वरन पति पत्नी भी आपस में। मैंने बहुत से सदस्यों से ऐसी कहानियां बहुत बार सुनी है। उनमें से बहुत से मुझसे कहते हैं कि यदि वो मानमीन सेंट्रल चर्च में नहीं आते तो फिर वो गरीब ही रहते, या फिर कुछ कहते हैं कि वो बहुत समय पहले मर चुके होते। महिलाएं ऐसा अंगीकार करती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सत्य को सुना है, इसलिए वो बदल गई हैं और उनके पतियों में भी सुसमाचार का प्रचार किया गया है, और इस प्रकार से पति और पत्नी सत्य से बदल गए हैं और वो हृदय से परमेश्वर से प्रेम कर पाए हैं और इस प्रकार से बच्चे शांति से पल बढ़ रहे हैं और शांति और सत्य के साथ परिवार संपूर्ण बन गए हैं। बहुत से चर्च के सदस्यों ने गवाहियां दी कि बीते समय में पति पत्नी के बीच में बहुत विवाद रहते थे, परिवार में रहना मुश्किल था, लेकिन जब से उन्होंने सत्य से अपने आप को बदला है और अपने साथियों की सेवा करना शुरू की है तो पति पत्नी के बीच में अब मेल मिलाप है और आशीषों के द्वार उस परिवार में विशालता से खुल गए हैं। इसी प्रकार से जब आपका हृदय सत्य से सत्य के हृदय में बदल जाता है और आसपास के लोगों की आप सेवा करते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और वो आप पर आशीषें उंडेलेगा। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप अपने शारीरिक माता पिता से प्रेम करते हैं, आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरी तरफ सिर्फ क्योंकि परमेश्वर के लिए आपके अंदर जोश है तो आपको अपने शारीरिक माता पिता को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसलिए यीशु ने उसको उत्तर दिया जो पूछ रहा था कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। उसने सिर्फ यही नहीं कहा कि केवल परमेश्वर से प्रेम करना है, उसने साथ ही साथ यह भी उत्तर दिया कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम भी करना है। यदि आपका प्रेम परमेश्वर के लिए सत्य है तो आप ना केवल विश्वासी भाइयों की सेवा करेंगे वरन अपने माता पिता, साथियों की, अपने संबंधियों की और अपने पड़ोसियों की भी सेवा करेंगे और उन्हें प्रेम करने का प्रमाण भी वास्तविकता में प्रकट होगा। उस कार्य के द्वारा बहुत से लोग आत्मिक उन्नति करेंगे और आप परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सब सदस्य सत्य की ज्योति के समान चमके उन लोगों के सामने अपने सिद्ध और भले कामों के द्वारा और अपने जीवन में आप परमेश्वर को महिमा दें। परमेश्वर जिसने आपके कामों के द्वारा महिमा पाई है आपको महिमा और आशीषों के साथ प्रतिफल दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। जब कोई प्रचार करता है कि हमें 10 आज्ञाओं को मानना है तो कुछ लोग बहुत आसानी से कहते हैं कि वो उन सबको मानते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी प्रतिक्रिया इसीलिए देते हैं क्योंकि वो समझते ही नहीं है कि उसमें आत्मिक अर्थ क्या पाया जाता है, इसीलिए नहीं कि वो उन्हें वास्तविकता में उचित तौर पर मान रहे हो। ज्यादातर मामलों में वो एहसास भी नहीं करते कि वो आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। वो मामला है जो आज की 6वीं आज्ञा में है क्योंकि यहां पर लिखा है कि तुम खून ना करना। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का खून नहीं किया और बड़े हियाव के साथ वो जोर देते हैं कि वो 6वीं आज्ञा को मान रहे हैं, परंतु जब वो इस आज्ञा का आत्मिक अर्थ सीखते हैं तो फिर ज्यादातर लोग इतने हियाव के साथ फिर जवाब नहीं दे सकते कि वो 6वीं आज्ञा को मानते हैं। मैं आपसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि आप सब मानमिन के सदस्य इस प्रश्न का ऊंची आवाज में आमीन के साथ उत्तर देने पाएं कि आप पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा बदल रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, अब से मैं 6वीं आज्ञा के ऊपर बातचीत करूंगा जो हमसे कहती है कि तुम खून ना करना। हर कोई इस बात को मानता है कि खून करना, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, दूसरों के जीवन को खत्म कर देना वो एक महान और गंभीर अपराध है। यहां पर आपको एक और बात याद रखनी है, सिर्फ दूसरों को मारना ही नहीं वरन अपने आप को मारना भी खून है। और आप अपने जीवन को सिर्फ इसीलिए समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका जीवन है और ना ही आप उसे जीवित कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि जीवन और मृत्यु का अधिकार परमेश्वर से संबंध रखता है। भ्रूण हत्या के मामले में भी ऐसा ही है। यहां तक कि शिशु गर्भ में है वह भी एक मनुष्य है। माता पिता शिशु को ऐसे ही नहीं मार सकते जैसे कि मानो वह उनका कुछ अपना निजी मामला है। हालांकि बच्चा गर्भ में है लेकिन तो भी उस शिशु के जीवन के ऊपर अधिकार परमेश्वर का है। खून अपने आप में एक महान पाप है और अभिभावक होने के नाते भ्रूण हत्या करना अपने ही बच्चे के जीवन को समाप्त करना है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी को सामान्य ज्ञान है तो वह जानता है कि किसी को मारना पाप है, चाहे वो ना भी समझे कि ऐसा क्यों है। लेकिन जब परमेश्वर ये कहता है कि खून ना करना तो इसका ना केवल शाब्दिक अर्थ है कि हमें किसी के जीवन को नहीं मारना चाहिए वरन परमेश्वर प्रतिबंध लगाता है कि हम आत्मिक खून भी ना करें। तो फिर आत्मिक खून करना क्या है? सबसे पहले अपनी बात और कार्यों के द्वारा किसी को ठोकर खिलाना है जो कि सत्य के विरोध में है। ठोकर खाना एक प्रकार से गिर जाना होता है जब आप चलते हैं या भागते हैं। किसी को आत्मिक तौर पर सत्य में ठोकर खिलाना उन्हें सत्य से भटकाना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक सदस्य लीडर से यह पूछता है कि रविवार को मेरे घर में कोई पारिवारिक कार्यक्रम है, क्या मेरे लिए ठीक है कि मैं रविवार की सभा में ना आऊं? और अब अगर लीडर उत्तर देता है कि यदि इतना महत्वपूर्ण है तो आप सबत को तोड़ दीजिए, तो फिर यह लीडर उस सदस्य को मृत्यु के मार्ग की ओर ले जा रहा है। इसीलिए यह आत्मिक खून है। परमेश्वर ने हमसे कब कहा है कि वो हमें अनुमति देता है कि हम अपवाद के मामलों में सबत को तोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। उसने हमें आज्ञा दी है कि हमें निश्चित तौर पर सबत को मानना है। एक और मामला मान लीजिए, एक सदस्य जो चर्च के पैसों का इंचार्ज है, उसे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है और उसके पास कुछ चर्च का पैसा है। मान लीजिए यह व्यक्ति लीडर से पूछता है कि मुझे थोड़े से समय के लिए पैसा चाहिए और कुछ ही दिनों में मैं वापस रख दूंगा, क्या मैं चर्च का कुछ पैसा अपने व्यक्तिगत कारण के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर लीडर उसे सिखाता है कि ठीक है, तो यह भी सीधे तौर पर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है और इस प्रकार से यह उस आत्मा को ठोकर खिलाना है। यह बिल्कुल ऐसा है कि एक अंधा दूसरे अंधे की अगुवाई कर रहा है और दोनों ही गड्ढे में गिर रहे हैं। यदि आप किसी को असत्य में सिखाते हैं जिसे वह व्यक्ति जीवन से दूर हो जाए, तो यह भी आत्मिक खून है। और साथ ही कभी कभार जब एक नया विश्वासी या कोई सदस्य आपसे, आप लीडर से सम्मति लेते हैं, यहां तक कि आपको उत्तर पता नहीं, तो भी अपने घमंड की वजह से आप उत्तर देते हैं, क्योंकि आप एक ऐसा उत्तर देते हैं जो उचित नहीं है, इसलिए यह सदस्य और भी अधिक मुश्किल में आ जाता है और भी अधिक आजमाइशों में पड़ता है। इसलिए मुझे आशा है कि इस तरह से आप किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। यदि आप निश्चित नहीं हैं कि आप सही उत्तर दे सकें, तो आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि आप उसे बाद में बता देंगे और फिर आप उसके विषय में प्रार्थना कर सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं जो आपसे ऊंचा हो, जिसे उत्तर पता हो, तब आप उस व्यक्ति को सही उत्तर दे सकते हैं। और साथ ही यदि आप बुरी बातें बोलें जो आपको बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए और किसी को ठोकर खिलाते हो उसके द्वारा, तो यह भी आत्मिक खून है। ये वो मामला होता है जब आप किसी का न्याय या निंदा करते हैं या आप शैतान के गढ़ बनाते हैं और निंदा करते हैं, दूसरों को एक दूसरे से अलग करते हैं। इसके द्वारा आप भाइयों के अंदर बैर पैदा करते हैं और उनके बीच में बुराई करते हैं। विशेष तौर पर यदि आप किसी पास्टर के बारे में बुरी बातें फैलाते हैं और किसी चर्च के बारे में, यहां तक कि खुद से बिना देखे बगैर, तो परमेश्वर निश्चित तौर पर उसका लेखा आपसे लेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ मामलों में कुछ लोगों को कोई ठोकर नहीं खिलाते, लेकिन वो अपनी ही बुराई के कारण ठोकर खाते हैं। यीशु ने केवल भलाई ही की, लेकिन यहूदियों की बुराई या यहूदी इसकरियोतियों के समान लोग, वो यहां तक कि प्रभु की ज्योति के अगुवाई में भी उन्होंने ठोकर खाई। उन्हें यीशु ने ठोकर नहीं खिलाई थी, उन्होंने अपनी ही बुराई के कारण ठोकर खाई। हमारे प्रभु यीशु जानते थे कि यहूदा इसकरियोती पैसे के थैले से पैसा चुराता है, लेकिन उसने तमाम चेलों के सामने उसे नहीं डांटा, ना ही उसके अपराधों को दूसरों के सामने प्रकट किया। यीशु ने अप्रत्यक्ष तरीके से उसे डांटने की कोशिश की, लेकिन तो भी यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया, ना ही अपने पापमय मार्गों से मन फिराया। उसने बुराई पर बुराई एकत्र की और मृत्यु के मार्ग पर चल दिया। यहां तक कि अगर किसी के अंदर कोई अपराध है, अगर आप उसके कारण ठोकर खाते हैं, तो आपको एहसास करना चाहिए कि आपके अंदर भी बुराई है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक नया विश्वासी है, उसने पुरानी आदतों को दूर नहीं किया है। जब कोई उसे देखता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि वो मसीह ऐसा क्यों कार्य कर रहा है, मैं उसकी वजह से चर्च नहीं जाऊंगा, और फिर अपने आप में ठोकर खाता है। यदि आप चर्च आते हैं किसी की वजह से, या फिर दूसरी तरफ अगर आप किसी की वजह से चर्च नहीं आते हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि आपके पास विश्वास है? यदि आप किसी पास्टर पर दृष्टि करते हैं, किसी एल्डर पर और सीनियर डिकनेस पर, यह सही उद्देश्य नहीं है चर्च आने का। अगर आप परमेश्वर पर और प्रभु पर दृष्टि करें, तो फिर इन चीजों के द्वारा आपके पास कोई कारण नहीं है ठोकर खाने का। लेकिन क्योंकि आप लोगों को देखकर चर्च आते हैं, तो आप ठोकर खा सकते हैं। या फिर कुछ दूसरे मामलों में, क्योंकि कोई व्यक्ति जिसको वो सोचते थे कि वो भरोसे के काबिल है, उसने अगर कुछ असत्य के काम किए, तो वो निराश हो जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए वो दूसरे व्यक्ति के लिए जिस पर वो भरोसा करते हैं, उनके जमानती बन जाते हैं और इस कारण से वो मुश्किल में आ जाते हैं। ऐसा करने के द्वारा वो प्रमाणित करते हैं कि उनका विश्वास और भरोसा सत्य नहीं था। विशेष तौर पर मैं हर वक्त सिखाता आ रहा हूं कि आप किसी के लिए कोई जमानत ना बने और भाइयों के बीच में कोई लेन देन ना करें। इसलिए यदि आपसे कोई किसी का कोई जमानती बनने को कहता है, तो आप योग्य होने चाहिए कि आप सत्य से पहचाने। लेकिन अगर आप साफ तौर पर नहीं पहचान पा रहे हैं, वरन परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं और किसी के लिए जमानती बनते हैं और फिर नुकसान हो जाता है आपका, तो फिर यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके द्वारा आपने ठोकर खाई है, ये कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। कुछ दूसरे मामलों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा ठोकर खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा वो बुरा मानते हैं। क्योंकि वो ज्योति में कार्य नहीं करते, अंधकार में जीवन जीते हैं, तो जब वो सत्य का वचन सुनते हैं तो अपने हृदय में वो बुरा मानते हैं, बुराई करते हैं और चर्च को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, जब प्रचारक कुछ पापों को दर्शाते हैं तो वो कहते हैं कि ये पास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उन्हें बुरा लग जाता है, वो दुखित होते हैं, चर्च को छोड़ के चले जाते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो सत्य है उसे ठोकर खाते हैं, क्योंकि वो संसारिक ज्ञान और उनकी शिक्षा के साथ सहमत नहीं होते। उदाहरण के लिए, बाइबल हमें कहती है कि दशमांश परमेश्वर से संबंध रखता है और हम आशीष पाएंगे अगर हम उचित दशमांश देंगे। परंतु जब प्रचारक इसके बारे में कहता है तो उन्हें असुविधा हो सकती है, ये सोचते हुए कि चर्च हमेशा पैसे पर जोर दे रहा है। और साथ ही जब प्रचारक परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग अपने शारीरिक विचारों के द्वारा विश्वास नहीं करते और असुविधाजनक भावनाएं उनके हृदय में उत्पन्न होती हैं और ठोकर खाते हैं, ये सोचते हुए कि वो मूर्खता की बातें कर रहा है। मत्ती 11 अध्याय 6 पद कहता है, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। और यूहन्ना 11 अध्याय 10 पद कहता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। यदि आपके हृदय में भलाई है कि आप अपने अंदर सत्य को ग्रहण कर सकते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा जो ज्योति है आप ठोकर नहीं खाएंगे। लेकिन क्योंकि आप अंधकार में रहते हैं तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप ठोकर खाते हैं जो कि ज्योति है। प्यारे भाई और बहनों, अगर कोई ऐसे ठोकर खाता है तो इसका मतलब यह है कि उसका विश्वास कमजोर है और उसके हृदय में बुराई है। लेकिन वो जो इस भाई को ठोकर खिलाता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उदाहरण के लिए, यद्यपि आप सत्य सिखा रहे हैं लेकिन सुनने वाले के विश्वास के परिमाण के अनुसार आपको सत्य को सिखाना चाहिए। एक नए विश्वासी के लिए जिसने अभी अभी प्रभु को ग्रहण किया है और पवित्र आत्मा पाया है, अगर आप उसे कहें कि शराब पीना, धूम्रपान करना छोड़ दीजिए अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, या फिर जिस व्यक्ति के पास विश्वास नहीं है अगर आप उसे कहें कि रविवार को अपनी दुकान मत खोली, या फिर प्रार्थना रोकना परमेश्वर के विरोध में पाप है इसलिए हर दिन चर्च आइए और प्रार्थना कीजिए, तो फिर क्या होगा? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे नए जन्मे शिशु को मीट खिलाना। उस बच्चे को दूध मिलना चाहिए लेकिन अगर वह मीट खाता है तो फिर उसके साथ क्या होगा? यहां तक कि वो दबाव डालकर पालन करें भी तो भी वह मसीह जीवन को मुश्किल महसूस करेंगे और फिर वह चर्च आना छोड़ सकते हैं। मत्ती 18 अध्याय 7 पद कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। ऐसा संभव हो सकता है आपके लिए कि आप किसी को ठोकर खिलाएं इस वक्त, लेकिन यीशु ने कहा कि हाय तुम पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। इसीलिए अपनी बातों से, अपने कार्यों से आपको किसी को ठोकर नहीं खिलानी चाहिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने किसी और कारण से कहा, लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति के विश्वास के परिमाण के अनुसार ये अनुचित हो और परिणाम स्वरूप आपने उस व्यक्ति का आत्मिक खून किया है और इस कारण से आप अलग अलग परीक्षाओं में पड़ते हैं। यदि आप सचमुच प्रभु से और आत्माओं से प्रेम रखते हैं तो आप सावधान रहेंगे, यहां तक कि अपनी एक बात के लिए भी, ताकि आप किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे बल्कि आप उसे अनुग्रह देंगे और उसकी आत्मिक उन्नति करेंगे। यदि भी आप वही सत्य उसे सिखा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप उसका अपमान कर रहे हैं या फिर उस व्यक्ति पर बोझ डाल रहे हैं या फिर आप उसे आशा और ताकत दे रहे हैं वचन का अभ्यास करने की। हमारे यीशु ने हमेशा से परमेश्वर की इच्छा को उचित तौर पर सिखाया, उसने कभी भी किसी को ठोकर नहीं खिलाया, बजाय इसके उसने प्रेम से सिखाया ताकि पापी परमेश्वर की इच्छा अनुसार कार्य कर पाए। उसने यहां तक कि अपना जीवन भी दे दिया सत्य में उनकी अगुवाई करने के लिए, और यीशु के द्वारा असंख्य आत्माएं जीवन के मार्ग पर आ पाई। मुझे आशा है कि आप भी बहुत से लोगों को जीवन के मार्ग पर अगुवाई करने पाए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, दूसरे प्रकार का आत्मिक खून अपने भाई से बैर रखना है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 पद कहता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यह सिर्फ हृदय में बैर रखना है, लेकिन क्यों परमेश्वर कहता है कि यह एक हत्या के समान है? यह इसलिए क्योंकि मूल तौर पर जो हत्या है वो उस पाप की जड़ से आता है जिसे बैर कहते हैं। यदि आप किसी से अपने हृदय में बैर रखते हैं लेकिन अगर वह बैर बढ़ता जाए तो फिर आप उस व्यक्ति के लिए उस बुराई को क्रियाओं में प्रकट कर सकते हैं और अंत में आप उस व्यक्ति का खून भी कर सकते हैं। केन के मामले में जो मनुष्य के इतिहास में पहली हत्या थी, उसका कारण भी पाप की वह जड़ थी जो कि बैर था। केन अपने छोटे भाई से हाबिल से प्रेम नहीं रख पाया, वो जलन रखने लग गया, ईर्ष्या करने लग गया कि हाबिल को परमेश्वर ने ज्यादा प्रेम किया है। यदि वह अपने भाई से प्रेम रखता तो वो जलन नहीं रखता, चाहे परमेश्वर उसके भाई से प्रेम ही क्यों ना कर रहा हो। वो आनंदित होता जैसे कि मानो स्वयं उसने प्रेम पाया हो, और वो और भी अधिक गहराई के साथ, प्रयासों के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करता कि परमेश्वर से प्रेम पाता। लेकिन केन के साथ यह मामला नहीं था। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि हाबिल ने परमेश्वर को जीवता बलिदान अर्पण किया भेंट के तौर पर और परमेश्वर को प्रसन्न किया, लेकिन उसके भाई केन ने परमेश्वर को शारीरिक बलिदान अर्पण किया। केन को भी वही जीवता बलिदान जैसे हाबिल ने किया था अर्पण करना चाहिए था, लेकिन केन की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की और फिर वो बैर रखने लग गया और अपने भाई हाबिल से ईर्ष्या की और अंत में केन ने हाबिल को मार डाला। क्या आपको लगता है कि अगर आप केन के स्थान पर होते तो आप ऐसा कभी नहीं करते? सचित्र रूप से अगर हम बात करें तो केन ने परमेश्वर को वो भेंट अर्पण की जो उसने पैसों के द्वारा तैयार की थी, अपने हृदय के द्वारा नहीं। उसके भाई ने जीवता और ईमानदार भेंट अर्पण किया, लेकिन केन ने वैसा बलिदान अर्पण नहीं किया जैसा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने परमेश्वर को जीवता और आत्मिक बलिदान अर्पण किया है? क्या आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं? हर आराधना सभा में आपको परमेश्वर को जीवता और आत्मिक बलिदान करना है जैसा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर कहता है कि वह आत्मा है, इसलिए उसकी संतान आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कितने लोगों ने आत्मा और सच्चाई से आराधना सभा में परमेश्वर की आराधना नहीं की है? इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आप क्यों उसकी आज्ञा नहीं मानते? आप सो जाते हैं, काल्पनिक विचारों में चले जाते हैं सभा के दौरान, और कुछ दूसरे ऐसा लगता है कि वो सभा में है लेकिन असफल रहते हैं संदेश को याद रखने में जो सभा के दौरान प्रचार किए जाते हैं, क्योंकि वो काल्पनिक विचारों में खो जाते हैं। परमेश्वर ने केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया जो अनाज्ञाकारिता से दी गई, वरन परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को प्रसन्नता से ग्रहण किया जो आज्ञाकारिता के साथ दी गई थी। इसलिए केन का बैर हाबिल के विरोध में गंभीर हो गया और अंत में उसने अपने भाई को मार डाला। मत्ती 5:21-22 पद कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आपको उन बातों में सावधान रहना है जो आप बोलते हैं। उदाहरण के लिए, इसमें अंतर पाया जाता है जब एक दादा अपने पोते को कहता है अरे मूर्ख, और दूसरी तरफ जब एक दादा अपने पोते को कोमल आवाज में कहता है अरे मूर्ख। बाद की बात में दादा का प्रेम पाया जाता है, लेकिन पहली बात वह एक अपमानजनक शब्द है। अपमानजनक शब्द, उसमें दुष्टता पाई जाती है। जब आप इन अपमानजनक शब्दों को अपने भाइयों को कहते हैं तो यीशु यहां पर चिताता है कि आप नरक में गिर जाएंगे। यदि आपके हृदय में भाई के विरोध में बैर है तो आप बहुत सी बुराइयां कर सकते हैं, जैसे कि जैसे अभी अभी आपको बताया गया। आप गुस्सा कर सकते हैं, उसे श्रापित कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, और अगर वो संपन्न हो तो आप जलन रखेंगे, आप न्याय रखेंगे, आप निंदा करेंगे और उसके अपराधों को लोगों में फैलाएंगे। आप उसका नुकसान करते हैं उसको धोखा देने के द्वारा। कभी कभार आप उससे शत्रुता रखते हैं और फिर उससे बिल्कुल भी बातचीत नहीं करते। यह बुरा कार्य बैर के द्वारा उत्पन्न हुआ और अंत में यह आत्मिक खून है। पुराने नियम के दिनों में पवित्र आत्मा अभी उन पर नहीं आया था, इसीलिए लोगों के लिए आसान नहीं था कि वह अपने हृदय का खतना करें और पवित्र बने। लेकिन नए नियम के दिनों में हमारे पास पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है, और वो हमें ताकत देता है कि हम यहां तक कि पापमय स्वभाव को भी हृदय से निकाल फेंकें। पुराने नियम के दिनों में लोग कामों से बचाए जाते थे परमेश्वर की व्यवस्था को मानने के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा जो मनुष्यों के लिए है वो यह है कि हृदय का खतना करें। लेकिन पुराने नियम के लोगों के लिए यह मुश्किल था हृदय का खतना करना, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदयों पर नहीं आया था। इसीलिए जब वो अपनी क्रियाओं में पाप नहीं करते थे, चाहे उनके हृदय में हत्या जैसी इच्छाएं क्यों ना हो, लेकिन तो भी वो उद्धार पाने के योग्य थे। ये उन पर लागू होता है क्योंकि पवित्र आत्मा उनके हृदयों में नहीं आया था। लेकिन आज यह बिल्कुल अलग है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में आ गया है क्योंकि हमारे यीशु पुनर्जीवित हो गए और स्वर्ग पर चढ़ गए, और वो आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है, योग्य बनाता है कि हमारे हृदय को नियंत्रित करे और हमारे हृदय से हम बुराई को दूर कर सके। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा जो आप में रहता है, आप पाप के विरोध में संघर्ष कर सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं, कि हर प्रकार की बुराई को हम दूर करें, उस बुराई समेत जो बुराई हम में छुपी हुई है, क्योंकि ये समय अब पवित्र आत्मा का समय है। विश्वास के कुछ पिता, कुछ पूर्वज जिन्होंने अपने हृदय से बुराई को दूर कर दिया था, यद्यपि उस समय पवित्र आत्मा का समय नहीं था, उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त किया और महानता से इस्तेमाल किए गए। इसलिए परमेश्वर आज चाहता है कि उसके संतान ना तो क्रियाओं में हत्या करें, और उसी वक्त वो हमें बता रहा है कि हम पाप की जड़ को, जिसे बैर कहते हैं, उसे निकाल फेंकें। अगर हम पाप और बुराई को अपने हृदय से निकाल फेंकते हैं, प्रेम से भर देते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह से निवास करेंगे और आप उसके प्रेम के प्रमाण के साथ जीवन बिताएंगे। आइए मैं आपको निष्कर्ष दूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पहला योना 4:11-12 पद कहता है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ये आयत हमें बताती है कि यदि हम सच्चे प्रेम में बने रहें, एक दूसरे से प्रेम करें, तो परमेश्वर हम में रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। ये वो प्रेम है जो परमेश्वर हमें दे रहा है। ये शारीरिक प्रेम नहीं है। शारीरिक प्रेम परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं है। मेरा मतलब है, आपके पास आत्मिक प्रेम होना चाहिए। आत्मिक प्रेम झुकता है, सेवा करता है, दूसरों के अपराधों को छुपा देता है। ये आत्मिक प्रेम अपने लाभ के पीछे नहीं चलता, ना ईर्ष्या करता है, ना बैर करता है, ना बकवाद करता है, ना न्याय करता है और ना ही निंदा करता है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि अगर किसी ने पाप किया हो, आपको जो करना है वो ये है कि आप उसे देखें और गुजर जाएं। आप उसके पापों को बहुतों को ना बताएं, वरन उचित मार्ग पर उसकी अगुवाई करें। यदि आप दूसरे से प्रेम करते हैं तो उसकी गलतियां और धब्बे वो पाप नहीं होंगे। यहां तक कि एक बड़ा अपराध भी आपको उसमें मिले तो भी आप उस पर कृपा करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि आप उसे ताकत दें, उस पर विश्वास की दृष्टि करते हुए, ताकि वो बदल सकें। क्योंकि हमारे प्रभु ने इस प्रकार का प्रेम हमें दिया है, इसलिए आप और मैं जो पापी थे, अब हम बचाए गए हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सबसे प्रभु के प्रेम से प्रेम रखें, जिसने शत्रुओं से भी प्रेम रखा, और इस प्रकार से परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, नए यरूशलेम में आपको ले जाएं और हमेशा से आपको प्रभु के प्रेम में निवास करने दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं।